ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दः श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा।
तो हम विशेष स्थान है, इस स्थान का नाम है अलारनाथ या फिर अलालनाथ या ब्रह्मगिरी, इस स्थान को कहा जाता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का ये बहुत प्रिय स्थली है। चैतन्य महाप्रभु ही नहीं बल्कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का भी ये बहुत प्रिय स्थान है। तो हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो कोई भी ऐसी घटना होती थी तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत कहते थे कि मैं अलारनाथ जा रहा हूँ। ऐसे तीन से अधिक घटनाएं घटी जब कोई भी डिवोटीज उनको पुश करते थे, हाँ, तो वो कहते थे मैं इस जगन्नाथपुरी को छोड़ के चले जाऊंगा। एक तो स्वयं ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आते हैं। कब आते हैं तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, अनवसरे जगन्नाथेर नापाय दर्शन, विरह जगन्नाथ करिला गमान। तो जगन्नाथ के विरह में चैतन्य महाप्रभु यहाँ आते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो एक भी दिन ऐसा अपना नहीं बिताते थे तो उस दिन जगन्नाथ का दर्शन ना करे। तो लेकिन जब ज्येष्ठ पूर्णिमा आती है, अभी तो आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का क्या है, बर्थडे है। कृष्ण के दो जन्मदिन हैं, एक तो कौन सा है, अष्टमी, भाद्रपद की अष्टमी, और ये ज्येष्ठ की क्या है, पूर्णिमा। राजा इंद्रद्युम्न के लिए विग्रह के रूप में भगवान जगन्नाथ उस दिन प्रकट होते हैं, इसलिए उनका महाअभिषेक मनाया जाता है। महाअभिषेक होता है कई सारे चंदन से युक्त जल के द्वारा, लोकल जो वैष्णवाज है, डिवोटीज हैं, वो उनका अभिषेक करते हैं। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा में भगवान स्नान करते हैं अपनी बहन सुभद्रा और बड़े बंधु बलराम के सहित हजारों भक्तों के सामने। फिर वो तो उनका एक बहाना होता है स्नान करने से, उनको क्या हो जाता है, बीमार हो जाते और बुखार आ जाता है। तो बुखार होना एक बहाना है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं, अंतरंग कारण। एक तो कारण है कि वह हमेशा सोचते कि मैं तो लक्ष्मी के साथ कभी मिलता ही नहीं ज्यादा। अब देखो लक्ष्मी उनकी भार्या अलग मंदिर में है, भगवान अपने साइड में है अलग से, इसलिए तो 15 दिन मैं लक्ष्मी को साथ बिताऊंगा एकांत में, इसलिए भगवान बीमारी का बहाना बनाते हैं। और दूसरा ये भी है, डेटीज का नया पेंट होता है, अंगराग उसे कहते हैं। तो ऐसे कई कारण आचार्यगण हमें बताते हैं। और तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु को दुख कब होता है, जब जगन्नाथ स्नान करके अपने मंदिर के अंदर निकलते हैं तो उनके दुख की सीमा नहीं रह जाती, तो उनको जगन्नाथपुरी अच्छा नहीं लगता। हाँ, भक्तों को भगवान के जिस स्थान में भगवान नहीं है वो उस स्थान से कोई काम नहीं है, मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। तो वैसे ही है चैतन्य महाप्रभु के साथ। जगन्नाथ को नहीं देखूंगा तो इस स्थान में मुझे क्यों रहना है। तो फिर ऐसे है चैतन्य महाप्रभु जब 15 दिन होते हैं उसको अनवसर कहा जाता है कि उस समय जगन्नाथ को आप नहीं देख सकते, दर्शन नहीं होता। तो फिर इस उस समय उनके हृदय में जगन्नाथ के लिए इतना अधिक विरह उमड़ उठता है कि चैतन्य महाप्रभु अकेले जगन्नाथपुरी को छोड़कर ईश्वर दौड़ने लगते हैं, इस स्थान में आते हैं। स्नान यात्रा देखी प्रभु हैल बड़ा सुख, ईश्वर अनवसरे पायल बड़ा दुख। स्नान यात्रा में तो आनंद आ रहा था उनको देखने में, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगते हैं उसमें महाप्रभु को बहुत दुख होता है। गोपी बावे विराहे प्रभु व्याकुल हैया, अलाल नाथे गेला प्रभु सबारे छाड़िया। फिर किसी को वो ध्यान नहीं देते महाप्रभु कौन मेरे साथ है और नहीं है, क्योंकि वो किसकी भावना में है, गोपी का भाव, और सर्वोत्कृष्ट गोपी कौन है, श्रीमती राधिका। तो ऐसे सर्वोत्कृष्ट गोपी श्रीमती राधिका के भाव को धारण करके और उस भाव का आस्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस क्षेत्र को चूज करते हैं। कौन सा क्षेत्र, जगन्नाथपुरी। तो इसको विप्रलंब क्षेत्र कहा जाता है, सेपरेशन है, विरह का स्थली है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु गोपिका के भाव में मत्त हो जाते हैं, पागल हो उठते हैं प्रेमावेश में, और इतना अधिक उनके हृदय में विरह उमड़ आता है कि वो जगन्नाथपुरी को छोड़ते हैं और अपने भक्त नित्यानंद प्रभु जगदानंद परमानंद पुरी आदि स्वरूप दामोदर रामानंद राय किसी का विचार नहीं करते, सार्वभौम भट्टाचार्य उन सबको त्याग कर चैतन्य महाप्रभु दौड़ लगाते हैं और यहाँ आते हैं। और किसको देखने के लिए आते हैं यहाँ, अलालनाथ या अलारनाथ या अलवरनाथ। तो ये विग्रह बहुत विशेष है शास्त्र में, ये जो विग्रह है इनका वर्णन आता है। तो इस स्थान को ब्रह्मगिरी भी कहा जाता है। तो ब्रह्मगिरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मा ने, गिरी का अर्थ है ऊंचा पहाड़, तो ब्रह्मा ने यहाँ तपस्या की थी भगवान के आदेशानुसार। और फिर भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा तुम क्या करो, मेरे विग्रह की स्थापना करो, ऐसा विग्रह बनाओ जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ है, और उनकी सेवा पूजा शुरू करो। तो ब्रह्मा जी इस विग्रह का निर्माण करते हैं और फिर उनकी पूजा अर्चना कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कालांतर में उनकी पूजा अर्चना स्थगित होती है। तो फिर पूजा के लिए ब्राह्मणास बुलाए जाते हैं दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत के जो वैष्णव हैं प्रमुखता उनको श्री वैष्णव कहा जाता है, श्री संप्रदाय है। तो श्री संप्रदाय में जो लक्ष्मी से वो संप्रदाय शुरू होता है, और श्री संप्रदाय में प्रमुख आचार्य आते हैं आगे चलकर जिनका नाम है रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य साक्षात लक्ष्मण है, राम और अनुज, अनुज का मतलब है छोटा, जो राम के छोटे हैं। तो जब राम के छोटे ये रामानुज कहलाते हैं, लक्ष्मण जब केवल कृष्ण कथा शक्ति का वर्णन करने के लिए, कृष्ण कथा का वर्णन करने के लिए रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट होते, तो रामानुजाचार्य के पास ये पावर है, पोटेंसी है, क्या कृष्ण की कथा का वर्णन करने की शक्ति किसी और के पास नहीं है, बहुत पावरफुल आचार्य थे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के आचार्य है। तो इस संप्रदाय के इनसे पहले भी कई आचार्य हुए हैं, नाथ मुनि हुए हैं, यमुनाचार्य हुए हैं, और उनसे पहले सबसे पहले 12 वैष्णवास हुए हैं। कलयुग शुरू हुआ, कलयुग शुरू होके 100 साल बीते थे या 150 साल बीते थे तब दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय में 12 वैष्णवों का जन्म हुआ, 12 आचार्य, 12 अलवराज उनको कहते हैं, अलवर, क्या कहते हैं, अलवर। तो 12 आचार्यों में से एक स्त्री थी जिनका नाम था अंडाल, गोदा अंडाल। तो ऐसे 12 ये जो प्रमुख आचार्य थे ये साक्षात कौन थे, कृष्ण के जो अलग अलग आभूषण है या फिर उनका शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, ये महान भक्तों के रूप में प्रकट होते कलयुग की शुरुआत में और संप्रदाय और इस भगवत भक्ति के इसको स्थापित करते हैं। तो ये 12 जो भक्त थे इतने पावरफुल थे, उनको अलवर कहा गया है। अलवर का अर्थ है जो डीपली कृष्णा में ऑब्जर्व रहता है, फुल्ली डीप, उसको अलवर कहते हैं। तो ऐसे उन अलवरों के जो फॉलोवर्स हैं ब्राह्मणास, वो यहाँ आए और यहाँ इनकी सेवा पूजा करने लगे। इसलिए उनको इस डेटी को क्या कहा गया, अलवर नाथ। फिर धीरे धीरे शब्द भ्रंश हो जाता है तो उसको फिर क्या कहने लगे, अलाल नाथ, ऐसे अलग अलग नाम पड़े। तो ऐसे ये अलवर नाथ या अलाल नाथ जो विग्रह हैं बहुत प्रिय हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, और कई सारी घटनाएं हैं, कई सारी लीलाएं हैं जिनको हम सुनेंगे या चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम ड्रामा देखेंगे, तो उस ड्रामा से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ये जो विग्रह हैं कितने पावरफुल हैं या कितने अफेक्शनेट, कितना डेटी को कितना अपने भक्त से प्रीति है। एक्चुअली किसी विग्रह के पास हम जाते हैं तो विग्रह की प्रमुखता यही है, विग्रह अपने भक्त के साथ प्रेम के लक्षण को प्रकट करते हैं, भक्तों के साथ प्रेममय आदान प्रदान करते हैं सेवा का। तो ये अलारनाथ, जैसे अभी हम दर्शन कर रहे थे तो पुजारी जी ने कहा था कि एक बच्चा था और उसने खीर ये कर दी, तो हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या है वो स्टोरी लाइन। हरे कृष्णा। तो हमारे डिवोटीज परफॉर्म करेंगे ड्रामा को, माइक इधर ले लो, ये स्टेज है उनके लिए।
ये भी लिया स्पीकर। स्टार्ट करो।
ये कहानी अलारनाथ भगवान की है, और जैसे प्रभु जी ने बताया कि पहले उनकी पूजा अलवर करते थे, तो उसी के आगे उन्हीं के तो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है उनका परिवार अलवर का, तो काफी लोगों को भिक्षा मांगने बाहर जाना पड़ता है। तो अभी देखते हैं एक श्री केतन नाम के ब्राह्मण है, उनके घर पे क्या होता है।
आगे आ जाओ, आगे
हे ब्राह्मण, एक बार आपकी दीक्षा है। दीक्षा
माइक दे दो।
देवी जी, मैं भिक्षा मांगने जा रहा हूँ।
यदि आप चले गए तो भगवान अलर्ना आपको भोग कौन लगाएगा?
मधु लगाएगा ना? मधु बेटा।
जी पिताजी।
बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, जब तक मैं ना आऊँ अलारनाथ को तुम्हें भोग लगाना है।
लेकिन मुझे भोग लगाना तो आता ही नहीं है, मुझे मंत्र भी नहीं आते, फिर मैं भोग कैसे लगाऊंगा?
अलारनाथ जी को भोग लगाने की बहुत ही सरल विधि है, बस भोग उनके सामने, भोग की थाली उनके सामने रखो और उनसे सिर्फ प्रार्थना करो कि वो भोग स्वीकार करें।
जो आगे
इस प्रकार श्री केतन चले जाते हैं और अब भोग लगाने का समय आता है।
बेटा मधु, भोग की सामग्री
आगे आगे।
बेटा मधु, भोग की सामग्री तैयार है, कृपया भगवान अलनाथ को भोग लगाया।
जी
जी माता जी।
नजदीक आ जाओ। पीछे हो जाओ आप वो बैंक।
हे भगवान अलरनाथ, मेरे इस बार मेरे पिताजी की भिक्षा की बारी है, इसलिए मुझे यहाँ आपको भोग लगाने आना पड़ा, तो कृपया आप कृपया आप स्वीकार करें। मैं खेल के आता हूँ, तब तक आप खा लेना। हाँ
आप इधर आ जाओ।
इस प्रकार 20 मिनट बीत जाते हैं और उसके बाद मधु वापस आता है और वह देखता है कि पूरा का पूरा भोग उसी प्रकार से पड़ा हुआ है। वह नहीं समझ सकता कि भगवान अपनी आँखों के साधन से ही भोग को ग्रहण कर लेते हैं। तो आगे देखिए क्या होता है।
अलाना जी, आपने कुछ भी नहीं खाया, आपको आपको और समय चाहिए? ठीक है, आप और समय ले लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। ठीक है, आप खा लीजिए। हाँ
कुछ मिनट और होते हैं और फिर मधु दोबारा आता है और देखते हैं पूरी थाली दोबारा वैसी की वैसी ही है।
आपने कुछ भी नहीं खाया, मेरे पिताजी माताजी मुझे बहुत डांट मारेंगे। उन्हें बोला था अलाना जी को भोग लगाना, आप नहीं खाओगे तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अलाना जी आप खा लो अलाना जी, प्लीज खा लो, कृपा खा लो अलाना जी, अलाना जी आप खा लो अलाना जी, कृपा खा लो।
माइक ले ले।
इस प्रकार अलाना जी खा लेते हैं और अब मधु अपनी माता के पास खाली थाली लेके जाता है।
बेटा मधु, प्रसाद की थाली ले आओ।
क्यों माता जी,
ये क्या, ये तो खाली है।
लाना ने चले आपने तो बोला था कि उनको भोग लगाओ, मैं भोग लगाया, उन्हें खा लिया।
क्या?
हाँ। अच्छा मैं खेलने जा रहा हूँ।
इस प्रकार कुछ दिनों पश्चात श्री केतन लौटते हैं और अब देखिए क्या होता है।
अब आ गए।
हाँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप अलाना जी का कुछ प्रसाद मुझे लाके दे दीजिए।
प्रसाद तो नहीं है, हमने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। मधु का कहना है कि अलाना जी ने सब कुछ खा लिया।
क्या, अलाना जी ने सब कुछ खा लिया? मधु
जी, पिताजी,
क्या अलाना जी ने सब कुछ खा लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने अलाना जी के भोग के साथ क्या किया?
मैंने कुछ नहीं किया, आपने बोला था कि भोग लगाओ, उनसे प्रार्थना करो और मैंने वो ही किया और मैंने वो उनको भोग लगा दिया।
झूठ मत बोलो मधु।
नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ।
या तो उसे तुमने खुद खा लिया है या किसी कुत्ते को खिला दिया है या फिर अपनी माता के भैंसे किसी और को खिला दिया है।
नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची में लाना जी ने खाया है।
मुझे तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। देवी तुम दोबारा खीर बनाओ। मधु तुम दोबारा भोग लगाने जाओगे और मैं गर्भगृह के पीछे खड़े होकर तुम्हें देखूंगा।
जो आ गया स्वामी।
ठीक है।
हे
अलाना जी, मेरे पिताजी वापस आ गए हैं। उन्हें बोला कि आपने भोग स्वीकार नहीं किया, लेकिन आपने स्वीकार किया है। कृपया आप फिर से पा लीजिए अलाना जी, पा लीजिए, फिर से खा लीजिए भोग प्लीज। कृपया खा लीजिए अलाना जी, खा लीजिए।
रुको, आप ये कैसे खा सकते हैं? आप तो पत्थर की मूर्ति है। अगर आप ये सारा प्रसाद खा लेंगे तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा? हम कैसे जीवित रहेंगे?
ए भौतिकवादी व्यक्ति, माइक माइक, ए भौतिकवादी व्यक्ति, तुम्हारे इस अपराध के कारण तुम्हारे संपूर्ण परिवार वैव वंश का विनाश हो जाएगा। केवल तुम्हारा पुत्र मधु बचेगा, क्योंकि उसकी प्रसन्नता वह सर उसकी भक्ति व प्रसन्नता थे, मैं बहुत खुश हुआ, इसीलिए मैंने उसके द्वारा अर्पित किया हुआ भोग खाया है। इससे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मुझे कैसा भोग अर्पित किया जा रहा है। मैं जब प्रसन्न होता हूँ, जब वह भोग प्रसन्नता व प्यार से बनाया गया हो।
इस घटना के कुछ दिनों बाद एक बाढ़ आई और उससे पूरे ब्राह्मण सारे ब्राह्मणों का विनाश हो गया, केवल मधु बचा। हरे कृष्ण। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, जो मैं क्षमा चाहती हूँ, काफी सारी मिस्टेक्स हुई हैं, तो लेकिन मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी, मदर के रूप में थी कविता, मधु के रूप में थी दिव्य राधिका, श्री केतन के रूप में थी अंजलि, और जो अलाना जी के विग्रह थे उनके रूप में थे बलदेव, और उनके पीछे हैं जयजीत, और जो मैसेंजर्स थे उनके रूप में हैं हंस और राधिका। वो
नरेटर और डायरेक्टर छवि माता जी। हरि बोल। सब लाउडली सब भक्तों के लिए चांट करेंगे हरे कृष्ण मंत्रा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अलारनाथ देव की, श्रील प्रभुपाद की। तो इसके बाद हम जगन्नाथ टेंपल जाएंगे पुरी में वापस। तो थोड़ी देर के लिए मैं चर्चा करता हूँ। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज यहाँ आए थे, उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के बाद अपने काफ़ी शिष्यों के संग में। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ सेवा उचित रूप से नहीं हो रही है, और दीवार आदि नहीं है, और काफ़ी चीज़ें की कमियाँ थी। तो फिर उन्होंने उन सारी सेवाओं को ठीक से करवाया। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का विशेष आकर्षण या विशेष प्रेम अलारनाथ के लिए था। और जब इस मंदिर की काफ़ी मरम्मत आदि हो रही थी तो उस समय जो मेन पुजारी हैं उनको एक विग्रह मिले अलारनाथ के, छोटे साइज के, इतने छोटे से सेम विग्रह। तो फिर वो पुजारी सोच रहा था कि इन विग्रहों का मैं क्या करूँ, कैसे पूजा अर्चना शुरू करूँ। तो अलारनाथ देव वो जो मेन पुजारी हैं उनके स्वप्न में आते हैं और स्वप्न आदेश देते हैं कि मेरे जो प्रिय डिवोटी हैं हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उनको आप ये विग्रह दे दो। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज उस विग्रह को स्वीकार करते हैं, अलारनाथ के छोटी साइज के जो विग्रह हैं आज भी हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने, क्योंकि ये स्थान ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मा ने यहाँ तपस्या आदि की थी, तो इसलिए उन्होंने आप गौड़िया मठ की स्थापना की और यहाँ ब्रह्मा गौड़िया मठ का उन्होंने निर्माण किया। और वहाँ राधा कृष्ण के विग्रह और गौरांग महाप्रभु के विग्रहों की भी स्थापना की। तो जो राधा कृष्ण के विग्रह हैं उनके नाम है गोप गोपिका। तो इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज काफ़ी समय अपना यहाँ बिताते थे। तो आचार्यगण इस स्थान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये जो अलारनाथ है या अलारनाथ जो कृष्ण है, ये चतुर्भुज किस प्रकार से हैं? हाँ, तो हमारे आचार्यगण लिखते हैं कि जब कृष्ण गोवर्धन में रास क्रीड़ा में मग्न थे तो उस समय अचानक उस रास स्थली को छोड़कर हम वो चले जाते हैं पैठा ग्राम में, जो घटना हुई थी वृंदावन में गोवर्धन के नजदीक। तो वो भगवान रास स्थली को छोड़कर चले जाते हैं, तो सारी गोपिकाएं उनके विरह में व्याकुल हो उठती हैं और उनको ढूंढने के लिए निकलती हैं। तो इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी हमें पढ़ने को मिलता है। तो सारी गोपिकाएं अलग अलग दिशाओं में मध्य रात्रि में भ्रमण कर रहे थे, तुलसी केतकी चमेली अलग अलग वृक्षों से पूछ रही थी कि क्या आपने कृष्ण को देखा है। तो ऐसा विरह भावना में कृष्ण को ढूंढ रही थी गोपिकास। तो भगवान भी उन सबके विरह को, विरह दशा को देख रहे थे। फिर भगवान ने क्या किया, एक स्थान में एक कुंज में कृष्ण चतुर्भुज हो जाते हैं। वही कृष्ण जो द्विभुज हैं, चार भुजाओं को धारण करते हैं और चार भुजाओं को धारण करके वह बैठ जाते हैं। तो उस समय गोपिकाएं ढूंढते ढूंढते उनके पास आती हैं और गोपिकाएं जैसे चतुर्भुज कृष्ण या नारायण है तो उनको देखती हैं, तो उनको तुरंत प्रणाम करती है, नमो नारायणा, कि हे नारायण आपको हमारा प्रणाम है, लेकिन आप हमें ये बताइए कि कृष्ण कहाँ है। तो गोपिकाओं का कोई आकर्षण नारायण के प्रति नहीं है, चतुर्भुज जो भगवान है उनका केवल एक में आकर्षण है द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण। कृष्णदास कविराज कहते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण हरे लक्ष्मी रमान गोपिका रमन हरि ते नारे नारायण, कि स्वयं भगवान कृष्ण इवन लक्ष्मी को भी अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जो नारायण की वारियां हैं। तो लेकिन ये ब्रज वधूस जो ब्रज की गोपियां हैं, ब्रज की बालाएं हैं, ये इतना प्रगाढ़ उनका प्रेम या आसक्ति भगवान द्विभुज श्याम सुंदर के प्रति हैं कि उनका लव मात्र भी आकर्षण भगवान के चतुर्भुज रूप के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से गोपिकाओं का ये आकर्षण है कृष्ण के लिए। तो जब ये गोपिकाएं आगे चली गई तो उस समय श्रीमती राधिका वहाँ आई, राधिका भी कृष्ण को ढूंढते हुए आई। तो कृष्ण को वो ढूंढते हुए आए तो कृष्ण अपने चार भुजाएं रख नहीं सकते श्रीमती राधिका के सामने, उसी क्षण दो भुजाएं गायब हो जाती हैं और केवल द्विभुज श्याम सुंदर या मुरलीधर जो रूप है वो दिखाते हैं। तो वो जो चतुर्भुज रूप कृष्ण ने गोपिकाओं के लिए धारण किया था उनको एक प्रकार से टेस्ट करने के लिए, तो वो रूप आचार्यगण भक्ति सिद्धांत महाराज आदि कहते हैं कि वो ये अलारनाथ हैं, द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कोई किसी चतुर्भुज रूप के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे। चैतन्य महाप्रभु तो केवल यशोदा नंदन कृष्ण श्याम सुंदर जो ब्रजेंद्र नंदन हैं उनकी ओर आकृष्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमती राधा रानी की द्युति मीन्स अंग कांति को धारण किया था और श्रीमती राधा रानी का जो भाव है उसको उन्होंने धारण किया था। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस स्थान में आते थे और ये स्थान वृंदावन से अभिन्न है। और चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार यहाँ आए, कृष्ण के प्रति उनके विरह की भावना थी, तो आए दौड़ते हुए इतना अधिक व्याकुल हो उठे थे। आते ही उन्होंने क्या किया, प्रणाम की मुद्रा में भगवान को प्रणाम किया। तो जो शिला है, जो हेड प्रिस्ट है, वो कहते कि ये वही शिला है जो ब्रह्मा ने जिसके ऊपर तपस्या की थी। तो जैसे ही भगवान को लॉन्ग प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु दंडवत, तो ये जो शिला है पिघल जाती है और चैतन्य महाप्रभु के दिव्य देह या दिव्य शरीर के सारे जो अंग हैं उसमें प्रकट हो जाते हैं। तो आज भी ये स्थान हम दर्शन कर सकते हैं और कृपा की याचना कर सकते हैं और इस लीला का स्मरण करते हुए हम वापस जा सकते हैं। अलारनाथ देव के, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, चैतन्य महाप्रभु के निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। ये ओरिजिनली द्विभुज कृष्ण है, जो ये कौन से कृष्ण है जो गोपिकाओं के सामने जस्ट चार भुजाएं उन्होंने की थी केवल, तो वही कृष्ण है। इसलिए यहाँ आते हैं, किसी और स्थान में नहीं जाते। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के वहाँ दर्शन करते थे, क्यों? क्योंकि वो केवल किसको देखना चाहते हैं? कृष्ण को, जगन्नाथ, किसी और को नहीं। हाँ, तो वहाँ से खड़े होकर केवल जगन्नाथ के दर्शन होते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम हरे हरे। तो जगन्नाथ, अलरनाथ का खीर प्रसाद बहुत विशेष है, तो आप सबके लिए खीर प्रसाद की व्यवस्था है। हरी बोल, तो अभी चल सकते हैं खीर प्रसाद लेकर। सबने लक्ष्मी जी का दर्शन किया पीछे? हाँ, लक्ष्मी जी यहाँ स्वयं प्रकट हुई हैं। हम कुछ साल पहले आए थे तो लक्ष्मी देवी नहीं थी, तो उधर ही अंडरग्राउंड ये लक्ष्मी देवी प्रकट हुई हैं पीछे, इस मंदिर के पीछे। तो आप जाकर, बहुत सुंदर विग्रह हैं लक्ष्मी देवी के, आप दर्शन कर सकते हैं, सब लोग प्रणाम कर सकते हैं।